जय राधा माधव जय कुंज देवा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन प्यारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन प्यारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा पुण्य बिहारी। नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद्देशवाणी अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवेश इस्कॉन फाउंडर आचार्य सुजरम दी होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव की जय। श्री श्री गौनताई भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसुमिंद वोटेज और ग्लोरी सुसुमिंद वोटेज और ग्लोरी सुसुमिंद वोटेज और ग्लोरी श्री गुरु एन गौरांग। मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत ही पवित्र त्यौहार आ रहा है, बहुत निकट है जन्माष्टमी का, तो उस उपलक्ष्य में हम कुछ कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है और अध्याय संख्या है 66। तो इसमें भगवान ने पौंड्रक का वध किया, तो उस लीला को हम लोग सुनेंगे। ठीक है, ये सब लीलाएं कृष्ण पुस्तक में पहले से प्रभुपाद ने दी हैं, है ना। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कृष्ण पुस्तक पूरी पढ़ी है? कृष्ण पुस्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं कृष्ण पुस्तक पूरी पढ़ी। तो कृष्ण पुस्तक में ये पौंड्रक मिथ्या वासुदेव इसकी कथा पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी है। तो प्रभुपाद का शरीर छूटने वाला था और उन्होंने 9 स्कंध तक श्रीमद् भागवत पूरा किया था, तो वो जानते थे कि 10वां स्कंध वो नहीं कर पाएंगे, उनका जो है शरीर छूटने वाला है। इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके हमें क्या प्रदान की? कृष्ण पुस्तक। ठीक है ना। तो कृष्ण पुस्तक में प्रभुपाद ने कथा के रूप में पूरा 10वां स्कंध है वो दे दिया है ना। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि कृष्ण पुस्तक के रूप में दे दिया। लेकिन हम जो है इस श्लोकों के द्वारा भी जो है इस कथा का आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है ना। जो श्लोक हैं इनके द्वारा हम कथा का आस्वादन करेंगे, तो आप लोग सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम व्रत को देखने गए हुए थे तो करोश के राजा ने मूर्खता पूर्वक ये सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। तो ये जो राजा था पौंड्रक, तो तो समस्या होती है कि राजाओं के सामने बड़ी समस्या होती है, क्योंकि राजा के जो है बहुत से चाप लोग होते ही हैं, खुशामद करने वाले बहुत होते ही हैं, है ना, अपना काम निकालने के लिए। तो राजा ही खुशामद करते हैं, है ना। अगर किसी ने कह दिया कि आप भगवान हैं और राजा ने अगर मना नहीं किया तो फिर वो भगवान, फिर सब लोग भगवान कहने लगते हैं कि आप भगवान, आप भगवान, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सावधान रहते थे, कोई अगर उनको भगवान कहता था तो बहुत नाराज होते थे। तो ये जो है बहुत सावधानी की बात है, हाँ, कि जो भगवान हैं उनके अलावा किसी को भगवान ना कहा जाए, है ना। क्योंकि भगवान के अंश जो जीव हैं तो ये तो ऐसी स्थिति है उनकी जैसे जुगनू, सूर्य के सामने जुगनू, हैं, तो कुछ महत्व नहीं है। तो हम जीवात्माएं चाहे कितना भी बड़ा पद पालें, कोई राजा बन जाएं या देवता बन जाएं, ब्रह्मा बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन भगवान के सामने क्या है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू उसी प्रकार से हैं, ब्रह्मा जी की भी स्थिति ऐसी है, है ना। इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जिनको ठीक से साधु संग नहीं मिला है तो वो जो है भ्रमित हो जाते हैं, और जब लोग उसको भगवान कहते हैं तो अपने को भगवान समझने लगते हैं, है ना। तो समस्या ये थी। और यहाँ पर बताया गया है कि जब बलराम जी गए हैं ब्रज में, ब्रजवासियों को देखने के लिए बलराम जी गए हैं, तो द्वारका में कृष्ण है। तो ये सोच करके कि अब कृष्ण अकेले हैं, बलराम नहीं है, तब जो है कृष्ण को मैं क्या कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, है, तो मैं तो भगवान हूँ, कृष्ण क्यों भगवान है, है ना। तो अपने दूध भेजा हूँ, नंद ब्रजम गते रामे करो साधिपतिर नृप वासुदेवो हम मित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणो। और समस्या यही थी कि मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया है, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो इस चक्कर में नहीं आते हैं कि कोई उनको भगवान कहे तो अपने को भगवान समझ लें, है ना। तो प्रभुपाद ने हम लोगों को जो है मतलब बड़ा सचेत किया है कि अपने को जो है भगवान नहीं समझना, कोई अगर भगवान कहे तो उसको भी जो है दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब मूर्खों की चापलूसी में, अगर मूर्खों की चापलूसी में आ गया, वो उसको कहते थे कि आप भगवान वासुदेव हैं, ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अब पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। अब देखो ये समस्या है, एक जीव उसको कुछ पता नहीं है कि पिछले जन्म में कहाँ था, अभी कहाँ है, अगले जन्म में कहाँ जाएगा, नरक स्वर्ग उसको कुछ भी पता नहीं है, है ना। और मूर्खों ने कहा आप तो भगवान है, आप तो जो है ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप पृथ्वी में अवतार लेने के लिए आए हैं, है? संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं, है? अपना तो उद्धार कर नहीं सकता है। ये मूर्खों ने जो है उसको जब बनाया तो बन गया मूर्ख, इस तरह वो अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। तुम वासुदेव भगवान अवतीर्णो जगतपति इति प्रस्तोभितो बालैर मेन आत्मानं अच्युतम्। अब देखो कितनी हंसी की बात है, बड़ी हंसी की बात है। उसने क्या किया, उस मंद बुद्धि ने भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा, संदेश भेजा, भगवान को संदेश भेजा, भगवान को संदेश भेजा, है, क्या संदेश भेजा कि तुम नकली भगवान हो, मैं असली भगवान हूँ। तुम नकली भगवान हो, मैं असली भगवान हूँ। वो मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था, जैसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं तो अपने को बालक, कोई बालक अपने को राजा समझने लगता है, सब लोग राजा बना लेते हैं उसको, है ना। दूतम च प्राहिण उन्मंदा कृष्णायाम व्यक्त वर्तमने द्वारकायाम यथा बालो नृपो बाल कृतो बुधा। द्वारका पहुंचने पर दूत ने भगवान कृष्ण को राजसभा में उपस्थित पाया, भगवान सभा में बैठे हैं, उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। दूत का काम है संदेश देना, तो उसने दिए संदेश दिया। दूतस्तु द्वारिका में तेन सभायां मासितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशम अब्रवीत। सुनिए राजा का संदेश दिया भगवान कृष्ण को, क्या संदेश दिया? मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ, पंडक का संदेश दूत ने सुनाया भगवान को। देखो साक्षात भगवान को सुनाया, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ, अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। इतनी हिम्मत कि जो साक्षात भगवान है ईश्वर परमहा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनको जो है संदेश भेजा उसने और क्या संदेश भेजा? अपना झूठा नाम छोड़ दो, वासुदेव आप कहलाते हो, अपना नाम अपना छोड़ो, असली वासुदेव मैं हूँ। झूठा नाम छोड़ दो। वासुदेवो वितीर्णो हम एक न चापर हम भूतानाम अनुकंपार्थम तुम मिथ्याभिधान त्यज। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन श्लोकों का दूसरा अर्थ भी निकाला है। दूसरा क्योंकि तो संस्कृत में जो है एक से अधिक अर्थ भी निकलते हैं किसी बात के, तो दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि मैं झूठा वासुदेव हूँ, मैं वासुदेव का अवतार नहीं हूँ, आप असली वासुदेव हैं और मेरी झूठी उपाधि आप छुड़वाइए, तो ये जो है दूसरा अर्थ निकलता है। तो वो तो अलग बात है, अभी हम इस पर विचार करेंगे कि कोई जीव जो है कितना मतलब अज्ञान में आ सकता है, कितने बड़े अज्ञान में आ सकता है ना। और क्योंकि भगवान जो असली परमेश्वर हैं वे क्योंकि मनुष्य की लीला करते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं, मनुष्य के बीच में अपने को मनुष्य ही कहते हैं और मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, है ना। तो जो मूर्ख हैं उनको बड़ा अवसर मिल जाता है, हैं, इनको मनुष्य समझने का, भगवान को मनुष्य समझने का बड़ा अवसर मिल जाता है और अपने को भगवान कहने का अवसर मिल जाता है कि बहुत से लोग मुझे भगवान कह रहे हैं और ये जो भगवान है ये तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर इनको क्यों ना हम मनुष्य समझें। अब जानते माँ मूढ़ा मानुष इन तन्माशोक, तो मूढ़ हैं वो अब मुझको मनुष्य के शरीर में आश्रित समझते हैं। परम भावम में जानन को मम भूत महेश्वरम, मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं जानते। तो कारण यही है कि गीता का जो उपदेश है भगवान ने जब अर्जुन को दिया तो वो बहुत गुप्त रूप से दिया, और भगवान ने क्या कहा ये बहुत गोपनीय है। क्यों? क्योंकि तो भगवान सामान्य व्यवहार में अपने को क्या दिखाते हैं? मनुष्य दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए मूर्खों को तो बहुत अवसर मिल जाता है, हाँ ये तो मनुष्य ही तो हैं, मनुष्य ही तो हैं, है ना। ये मतलब समस्या होती है। और राजा के रूप में जो है बहुतों को अपना काम निकालना चाहते हैं, राजा से उनको धन मिलता है, पद मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, ये वो, तो राजा को जो है खुश करने के लिए जो जैसी आवश्यकता वैसा बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ तक उसने मतलब भगवान कह दिया कि मैं वासुदेव हूँ, है ना। अच्छा भगवान भगवान को वासुदेव कहा जाता है, वासुदेव का एक अर्थ तो यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करते हैं वो वासुदेव हैं, लेकिन वासुदेव का एक दूसरा अर्थ भी है, क्या? वसुदेव जी के पुत्र, वसुदेव एक मनुष्य हैं और वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव कहलाते हैं। तो भगवान जो है वासुदेव कहलाते हैं इस कारण से भी कि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं और पिता जी के मनुष्य हैं, तो मनुष्य का पुत्र भी मनुष्य सामान्य है, जो धारणा है वो यही है। तो भगवान जब वासुदेव कहलाते हैं तो उस मनुष्य भाव में ही भगवान अपने को वासुदेव कहते हैं कि मैं वासुदेव हूँ, वसुदेव जी का पुत्र हूँ। जैसे भगवान राम दासरथी दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ मनुष्य हैं तो उनका पुत्र मैं भी मनुष्य हूँ, है ना। तो भगवान भी जात्मा को वासुदेव कहलाते हैं, इसलिए मेरे पिता वासुदेव भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, मनुष्य का पुत्र भी मनुष्य, है ना। लेकिन वो जो है वासुदेव अपने को कह रहा है, किस दृष्टि वासुदेव कह रहा है, वासुदेव भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड जिनमें वास करते हैं, वासुदेव या संपूर्ण देवता जिनमें वास करते हैं, तो मैं वो वासुदेव हूँ, है ना। तो तुम अपना वासुदेव नाम छोड़ो, है ना। ये यादव तुम मेरे चिन्हों को छोड़ दो। अब देखो कितनी हिम्मत, भगवान के चिन्ह हैं संघ चक्र गदा पद्म, भगवान के हाथ में चिन्ह है। हालांकि भगवान जो है द्वारका में रहते हैं, तो दो भुजाओं में भी कभी रहते हैं, कभी चार भुजाओं में रहते हैं। द्वारका की लीला कैसी है कि भगवान दो भुजाओं में रहते हैं लेकिन चार भुजाओं में भी रहते हैं, और चार भुजाओं में अपने संघ चक्र गदा पद्म भी प्रकट करते हैं। ये सामान्य जीवन है द्वारका का, आप समझे ना। तो द्वारका में अक्सर जो भक्त लोग हैं भगवान का दर्शन करते हैं चतुर्भुज रूप में, है ना। जैसे वृंदावन की लीला है उसमें द्विभुज श्याम सुंदर हैं, दो भुजाओं के हैं, चतुर्भुज रूप प्रकट नहीं करते हैं। मथुरा में भगवान चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा द्विभुज रूप। लेकिन द्वारका में ज़्यादा चतुर्भुज रूप, ज़्यादा चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप कम, है ना, द्वारका की लीला में। तो उसने भगवान को संदेश भेज दिया, सोचो कहाँ तक, मतलब अज्ञान और कितना दुस्साहस है। किसने क्या संदेश भेजा कि जो हमारे चिन्ह हैं उनको छोड़ दो, जो हमारे चिन्ह हैं वो छोड़ दो, मतलब संघ चक्र गदा पद्म जो हमारे चिन्ह हैं तुम छोड़ दो। भगवान के पास जो चिन्ह हैं संघ चक्र गदा पद्म इस पृथ्वी में थोड़ी है वो बनाए गए हैं, वो तो भगवान के धाम से आए हैं, और जब भगवान चाहते हैं तो चले जाते हैं, और जब चाहते हैं तो उनके हाथ में आ जाता है चक्र है संघ चक्र गदा पद्म, जब चाहते तो आ जाता है, है ना। तो पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा पर है वो आ जाते हैं, और नहीं तो चले जाते हैं। उनको कुछ रखने की भी जरूरत नहीं कि कोई जगह उनको रखा जाए भगवान के लिए, है ना। लेकिन उसने जो है इतनी हिम्मत की, मतलब हद से भी ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा हो गया। नाम छोड़ो तुम अपना कि मैं हूँ वासुदेव, लेकिन उसका नाम वासुदेव नहीं है शुरू से ही, मैं वासुदेव हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे नाम दे दिया है, मेरे जो चमचे हैं उन्होंने मुझे नाम दे दिया वासुदेव, तो मैं वासुदेव हो गया हूँ। अब तुम अपना नाम छोड़ो वासुदेव, अपनी हमारे चिन्ह भी तुम छोड़ो, हमारे चिन्ह छोड़ो है। क्या बोला है कि मूर्खता वश तुम धारण करते हो मेरे चिन्ह, क्या क्या बोला, मूर्खता के कारण तुम मेरे चिन्हों को धारण करते हो, भगवान को बोल रहा है मूर्खता के कारण तुम मेरे चिन्ह धारण करते हो, है, और उनको चिन्हों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, और ज़्यादा अज्ञान, मेरी शरण में आओ, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मुझे युद्ध प्रदान करो, मुझे युद्ध प्रदान करो। यानी तस्मन चिन्हानी मौर्यान त्यक्त ही माम तम शरण नोचे देहि ममाहवम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पुंडर की इस व्यर्थ दीन को वैद्य उग्रसेन और सभा के अन्य सदस्य ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे, बहुत हंसे, हंसने की बात है। कथनम तन्नुपाकर्ण पौंड्र कश्याल्पेद सहम उग्र सेना देहा संध्या उच्च कैर जह सुदाम। तो हंसने की बात है नहीं है, हंसने की बात है कि नहीं है, हंसने की बात है, हंसने की बात है ना। क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति कितना मूर्ख हो सकता है, कितना मूर्ख हो सकता है, है ना। और भगवान को बोल रहा है कि मुझे युद्ध प्रदान करो, या तो मेरे सिन्न छोड़ो और मेरा नाम छोड़ो, अन्यथा मुझे युद्ध प्रदान करो। और उसके है ना, उसने दो हाथ नकली लगाए हुए हैं, अपनी चार भुजाएं उसने बना ली हैं, तो कैसे दो भुजाएं तो यही हैं, मांस की हैं, उसका शरीर तो खून मांस का बना हुआ है, दो भुजाएं तो मांस खून की बनी हैं, और दो भुजाएं नकली लगा ली हैं, और चारों चिन्ह नकली उसने धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पर में नकली धारण करने, और उसको धारण करने में उसको बड़ा कष्ट होता होगा। दो नकली भुजाएं अगर लगाई हैं तो चिपकाई होंगी, कैसे चिपकाई होंगी, तो ये भी उसके लिए बड़े कष्ट की बात होगी, हैं। और फिर संग चक्र गदा पद्म भी जो है रखे होंगे, उसने पकड़े होंगे, तो समझो उसको कितना कष्ट होता होगा, हैं। और उसमें भी इतने कष्ट में भी जो है वो भगवान को बोल रहा है कि तुम ये चिन्ह छोड़ो और मेरी शरण में आओ, या मुझसे युद्ध करो, है ना। और ऐसे में युद्ध करना भी बड़ा मुश्किल है उसके लिए, नकली भुजाएं दो अगर चिपकाई हुई हैं कहीं पर, अब युद्ध कैसे करेगा उसके लिए हाथों को हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जब वो जो है दो नकली भुजाएं उसने लगाई होंगी, कैसे लगाई होंगी, हैं। तो कोई बड़े कलाकार होंगे उसके राज्य में जिन्होंने मतलब लगा दी हैं, तो वो भी हिला भी नहीं सकता, लटकती होंगी नकली भुजाएं, लटक रही होंगी उसके, हैं। ऐसी हालत में जो है भगवान को बोल रहा है वो, सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से कहा। अब खूब देर तक जो है क्या हुआ, हंसी मजाक हुई, और सब लोगों ने जो है मतलब अपने अपनी तरफ से बोला, देखो कितनी उसकी जो है हिम्मत है, कितनी उसकी तमन्ना है भगवान बनने की, हैं। तो सब लोग जो है सभा में बोलते रहे आपस में। उसके बाद फिर जो है जब सब ने बोल लिया, हंस लिया, तब भगवान ने दूत से कहा, मेरा संदेश देना। दूत को तो दंड नहीं देना चाहिए, दूत को तो दंड नहीं देना चाहिए, दूत तो अपना काम कर रहा है, जो बात कही गई उसको दोहरा रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको बोलना, रे मूर्ख, मैं निस्संदेह उन हथियारों को छोड़ूंगा, तेरे ऊपर छोड़ूंगा तूने छोड़ने के लिए कहा है तो उन चिन्हों को तेरे ही ऊपर छोड़ूंगा, हैं, जिनके विषय में तू इतना बोल रहा है, हैं, बहुत इच्छा है उन पाने की, तो मैं छोड़ूंगा तेरे ऊपर उन चिन्हों को। वाज दूतम भगवान परिहास है कथा मनु उत्सक्ष मूढ़ चिन्हानि यह समय एवं विकथते। तो भगवान का संदेश है, रे मूर्ख, जब तुम मृत हो जाओगे और तुम्हारा मुख गीधों चीलों और पक्षियों के द्वारा ढका रहेगा, तो तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनोगे। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी शरण लें, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो कुत्ते तुम्हारी शरण लेंगे भोजन के लिए, कुत्ते आएंगे तुम्हारी शरण में, गॉड और डॉग ऐसा होता है ना अंग्रेजी में, डॉग शब्द है। तुम गॉड को चाहते हो शरण लें, लेकिन परिणाम ये होगा कि तुम मर जाओगे तो डॉग तुम्हारी शरण लेंगे, यानी भोजन, उनको भोजन प्राप्त होगा, मर जाए ना। प्रभुपाल कहा कहते, अगर गॉड की शरण नहीं में लेते हो तुम, तो डॉग की शरण लोगे, है ना। और होती है आजकल लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो चाहता है गॉड मेरी शरण में आए। तो भगवान ने कहा कि गॉड तेरी शरण में नहीं आएंगे, डॉग तेरी शरण में आएंगे। तो शरीर छोड़ देगा, हाँ, तो तेरे शरीर को खाने के लिए डॉग तेरी शरण में आएंगे। मुखम तदय पिन्हायाज्ञ कंगग्रद्रय वटैर्वृतहं सहिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं सुनाम। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमानपूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूरी तरह कह सुनाया। दूत का काम यही होता है, टेप रिकॉर्डर, पहले टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, लेकिन दूत क्या होते थे, टेप रिकॉर्डर जैसे काम करते थे, जो कुछ भी बोला है यहाँ पर बोल दिया और यहाँ पर जो बोला है वो वहाँ पर बोल दिया, तो पूरा पूरा जो है उसने शब्द जो कि क्यों उसने राजा के सामने बोल दिए, और भगवान ने बड़े कठोर शब्द बोले थे, है ना, तो दूत ने सुनाया उसको। तब भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। अब काशी है वो करुष देश से दूत आया था, लेकिन भगवान गए काशी, तो भगवान को पता है, भगवान को सब कुछ पता है, तो उसके राज्य में नहीं गए, क्योंकि वो था काशी में, अपने मित्र राजा की राज्य में था, काशी में था, तो भगवान सीधे काशी गए सिद्ध करने के लिए। इति दूत समाक्षेपम स्वामी ने सर्व माहरम कृष्णो अपि रथम आस्थाय काशी मोप जगाम। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी देखकर योद्धा पौंड्रक तुरंत ही दो अश्वनी सेना के साथ नगर से बाहर निकल आया। कहाँ से? काशी से बाहर आए। पौंड्रको अपि तदुद्योगम उपलभ्य महारथः अश्वनीभ्याम संयुक्तो निश्चक्रामे पुराद्रुतम। तो काशी में किस लिए था? क्योंकि जो काशी का राजा था वो भी उसका समर्थन करता था, पौंड्रक का, पौंड्रक का समर्थन करता था। नहीं, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, अगर भगवान बनना चाहता है तो मेरा भी फर्ज है उसको भगवान बनाना, है ना। इसी प्रकार से भगवद गीता में कोई व्यक्ति शक करेगा कि अर्जुन तो कृष्ण के मित्र हैं, तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को भगवान कहा, कृष्ण अपने को भगवान कहते हैं तो अर्जुन भी कृष्ण को भगवान कहते हैं, ये तो मित्रता की बात है इस कारण से। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप मुझे विश्वरूप दिखलाइए, ताकि किसी को ये मौका ना मिले कि कृष्ण अपने को भगवान कहते थे, अर्जुन भी मित्र हैं तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण को कहा, तो हम कृष्ण को भगवान क्यों माने, है ना। तो यही सोच करके अर्जुन ने फिर भगवान से क्या कहा कि आप विश्वरूप दिखाइए अपने, है ना, ताकि किसी को ये मौका ना मिले कि नहीं अर्जुन तो जो है कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, कृष्ण अपने को भगवान कह रहे हैं, ये तो मित्रता है, मान रहे हैं, तो अपना विश्वरूप दिख लाइए, है ना। तो कोई अगर अपने को भगवान कहे तो अपना विश्वरूप दिखाने के लिए तैयार रहें, है ना। तो काशीराज जो है मित्र था पौंड्रक का, है, तो पौंड्रक का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे आया और तीन अक्षौणी सेना समेत पीछे के रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने बड़ा अच्छा जो है वो किया है, अपना बेस बनाया हुआ है, अब क्या बनाया है, तारक धनुष धारण किए, तारक धनुष धारण किए है, श्रीवत्स का चंद्र धारण किए है और कौस्तुभ मणि भी धारण किए है। अब देखो कौस्तुभ मणि भगवान की पहचान है, वैकुंठ में सब चार भुजाओं के हैं, है ना, भगवान की तरह सब चार भुजाओं के हैं, चार भुजाओं के हैं। और कोई व्यक्ति नया व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो किसी भी व्यक्ति को वो जो है भगवान समझ सकता है, भगवान समझ लेते हैं तो तुरंत मना करते हैं, नहीं मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, ये चेतना होती है, जबकि भगवान जैसा रूप है सबका वैकुंठ में, लेकिन ये चेतना होती है, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। और भगवान जो है वैकुंठ में है, उनकी पहचान कैसे होती, कौस्तुभ मणि से, चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म सबके हैं, है ना, कौस्तुभ मणि से। तो वैकुंठ में एकमात्र कौस्तुभ मणि है भगवान के पास, है ना, और इसने जो है वो कौस्तुभ मणि भी धारण कर ली भगवान बनने के लिए, समझ रहे हैं, है? वो कौस्तुभ मणि भी धारण कर ली और वनमाला से विभूषित हो गया, जैसे भगवान की वनमाला है, ऊपर और नीचे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र भी धारण कर लिए, पीताम्बर, ये भगवान है पीताम्बर। है, और जो है जो रथ में गरुड़ का चिन्ह भी धारण कर लिया, तो भगवान के रथ में गरुड़ का चिन्ह है, गरुड़ ध्वज कहलाते हैं, तो गरुड़ का चिन्ह भी धारण कर लिया, सब कुछ नकली है, और मुकुट भी उसी प्रकार से, और मकराकृत कुंडल, भगवान के कुंडल हैं मकर के आकार के हैं, तो मकराकृत कुंडल भी धारण कर लिए, सब कुछ तस्य काशी पतिर्मित्रं पाशिग्राहोन् पाशिग्राहोन् वयान्नृपम् अक्षहनिवेशिभिर् अपश्यन् पौण्डकं हरिं संहार्यसि गदांसार्गं श्रीवत्सादुपलक्षितं बिभ्राणं कौसुभमणिं वनमाला विभूषितं कौसेयवाससि पीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्। तो भगवान ने जब देखा कि राजा ने उन्हीं जैसा अपना वेश बना रखा है जिस तरह मंच पर अभिनेता करता है, मंच पर होता है ना ड्रामा, तो नाटक में जैसे अभिनेता रूप सजा लेता है, जन्माष्टमी में तो बहुत से बच्चे कृष्ण बनते हैं, है ना, तो उस तरह से जो है उसने अपना पूरा वेश सजाया हुआ है, है? अब आप सुन रहे, ऐसा वेश सजाने में उसको अब युद्ध करने में बड़ी कठिनाई होगी, है कि नहीं? युद्ध करने के लिए तो व्यक्ति को और अपना खेचा कसना पड़ता है, ये कपड़े उतारने पड़ते हैं, कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब इतना जब सब अपने उस सजा लिया है तो एक भार बन गया ना उसके लिए, एक भार बन गया। ऐसी स्थिति में भगवान से युद्ध करने के लिए आया है ना, तो क्या हुआ, भगवान खूब हंसे, उसको देख करके भगवान खूब हंसे, उसको हंसी नहीं आ रही, उसको हंसी नहीं आ रही, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको क्यों गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा है भगवान बनने की, अब भगवान तो है नहीं, उसकी भगवान बनने की इच्छा है, तो भगवान जब हंस रहे हैं तो उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरी इच्छा जो है मैं ये बाधा डाल रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, मतलब इसको कहते हैं दुराशा, दुराशा का मतलब है गलत आशा, गलत इच्छा। आप जो नहीं हैं वो आप चाहते हैं बनना, तो ये इसको कहते हैं दुराशा, गलत इच्छा है ना, तो उसको जो है बहुत कष्ट हो रहा है और भगवान हंस रहे हैं, है ना। और भगवान क्यों हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं ताकि इसकी आँखें खुलें, इसका ज्ञान दूर हो, इसलिए हंसा जाता है। कभी कभी अज्ञानी व्यक्ति के अज्ञान को देख करके जो बुद्धिमान लोग हंसते हैं, क्यों तो हंसते हैं, जैसे उस समझ में आए कि मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, मैं कितना मूर्ख हूँ, है ना, इसलिए हंसने की विधि है, ये विधि है कि हंसा जाए। तो भगवान खूब हंसे, दृष्टात्म आत्मा अनुतुल्यम वेशम कृत्रिम आसितम यथानटम रंगगतम विजिहास भृशम हरिः। भगवान हरि के शत्रुओं ने उन पर, अब जब भगवान हंसे तो शत्रु लोग थे उनके सेना के, है ना, उन्होंने भगवान के ऊपर प्रहार किए, सब प्रकार के शस्त्रों का प्रहार किया, हा? क्या त्रिशूल गदा शक्ति दृष्टि प्रास तोमर तलवार कुल्हाड़ी बाण ये सब जो है भगवान के ऊपर छोड़े, पौंडर की सेना है छोड़े। सूर्य गदा भी पड़ी गए शक्ति दृष्टि प्रास तोमर है अधरी पट्टी शैर बाण है प्राहरण नरियो हरिम। किंतु भगवान कृष्ण ने पौंडर काशीराज की सेना पर भीषण प्रहार किया जिसमें हाथी रथ घोड़े पैदल सब थे। इसको चतुरंगनी सेना कहते हैं, चार अंग होते हैं सेना के, एक अंग है हाथी सवार, हाथी होता है उसमें महावर होता है और उसमें बैठा हुआ एक योद्धा होता है युद्ध करता है, तो ऐसे हाथी सवार होते हैं बहुत से, और रथ सवार होते हैं, रथ होता है उसमें घोड़े जोते होते हैं, सारथी होता है और एक योद्धा होता है उसमें बैठा हुआ, तो रथ ही चलाते हैं, और घुड़सवार होते हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए घुड़सवार, और पैदल होते हैं, तो चार अंग होते हैं, तो सेना के चारों अंग थे। भगवान ने अपनी गदा तलवार सुदर्शन चक्र बाणों से अपने शत्रुओं को पीड़ित कर दिया, जैसे प्रलय की अग्नि समस्त प्राणियों को सता दिया भगवान ने, है ना। कृष्ण सु तत्पौंडक काशीराज योर बलम गजश्चंदन बाजी पतिम गदासी चक्रेशु धीरार्दयंधसं यथा युगान्ते हुतभुं प्रथं प्रजा। तात्पर्य लिखा है राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा करने लगे। हथियारों में त्रिशूल, गदा, खंभे, भाले, तलवारें, खंजर और बाण थे, जो लहरों की तरह आ रहे थे और कृष्ण उनका सामना कर रहे थे। उन्होंने न केवल उन हथियारों को नष्ट किया, अभी तो पौंड्रक के सैनिकों को और सहायकों को भी नष्ट किया। कृष्ण के हथियारों से तितर बितर हो गई पूरी सेना। भगवान ने चक्र छोड़ा अपना, भगवान ने चक्र छोड़ा, है ना। अब पौंड्रक के पास जो चक्र था वैसा चक्र थोड़ी था जैसे भगवान का चक्र है। भगवान तो चक्र को आज्ञा देते हैं, है ना, और फिर भगवान के हाथ में आ जाता है ना। और भगवान आज्ञा दें तो 10 करोड़ लोगों का सिर काट करके भगवान के हाथ में आ जाएगा। ये तो भगवान का चक्र है ना, ये कोई भौतिक जड़ वस्तु थोड़ी है, भगवान का चक्र है ना। तो भगवान ने चक्र के द्वारा खंड खंड कर दिए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, खच्चर, ऊंट, सब टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसी तरह पूरा युद्ध क्षेत्र चमक रहा था, मानो भूतपति का भयावना अखाड़ा हो। आयोधनम तन रथवाजी कुंजर विपन खरोस्त्र रणिया रही ना विखंडित भोचितम मोद मनसी नाम आकिरेडनम भूतपते रिवोल्बणम। युद्ध भूमि में जब ऐसा भयानक दृश्य होता है तो जो वीर होते हैं उनको बड़ा उत्साह पैदा होता है ना, और जो कायर होते हैं उनको बहुत भय महसूस होता है। जो वीर होते हैं उनको बड़ा उत्साह पैदा होता है, आनंद आता है ऐसा देख करके। अब भगवान ने पौंड्रक को संबोधित किया। अभी तक तो हंसे थे भगवान, अब आमने सामने आए कि सेना खत्म, अब अकेला वो रह गया है। अब वो भाग नहीं सकता है क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं कैसे भागू। अब भगवान बनने का जो है अब उसको दंड तो मिलेगा है, तो भगवान कैसे भाग सकते हैं है? और मैं असली भगवान हूँ और आप नकली भगवान हैं, तो भाग कैसे सकते हैं, असली भगवान कैसे भाग सकते हैं। तो भगवान ने अब उससे बोला, भगवान ने कहा, रे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलाया था छोड़ने के लिए, अब मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ, अब संभाल तू। तूने संदेशा भेजा था कि मैं अपने चिन्हों को छोड़ दूँ, तो मैं तेरे ऊपर छोड़ने आया हूँ, अब संभाल तू मेरे चिन्हों को। भगवान बोले, अथा है पौंड्रकम सौर्य भो भो पौंड्रक भवान दूतवाक्य मामा है तान्यस्त्राण्युसृजामी ते, तेरे ही ऊपर छोड़ रहा हूँ, तेरी बड़ी इच्छा है कि मैं छोड़ूँ अपने हथियार, तो तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तू असली भगवान है और मैं नकली भगवान हूँ। अच्छा, तो तात्पर्य में लिखा है, इसमें भगवान कृष्ण पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे भगवान विष्णु के प्रतीकों को, विशेष किया मेरे चक्र को त्यागने के लिए अनुरोध किया था, अब मैं इसे तुझ पर छोड़ूंगा, सावधान हो जा, तू झूठे ही मेरा अनुकरण करते हुए अपने को वासुदेव घोषित कर रहा है, अतः तुझसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट है कि जो भी धूर्त अपने को ईश्वर घोषित करता है वो मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है। हे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा, जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा है। मैं तब अवश्य तेरी शरण ग्रहण करूंगा, यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ तो तेरे शरण में आऊंगा। त्याग से भी धानम में यत्त्याग यत्त्याग मृषाधृतम ब्रजामि शरणम तेज यदि नेच्छामि संयुगम। भगवान कहते हैं, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वाऊंगा, तूने वासुदेव नाम जो मिथ्या अपना बना लिया है, तेरा नाम छुड़वाऊंगा मैं। हे पौंड्रक, अब मैं तुम्हें झूठा प्रतिनिधित्व त्यागने के लिए बाध्य कर दूंगा, तूने चाहा है कि मैं तेरी शरण लूँ, अब तेरी बारी है, अब हम युद्ध करेंगे, यदि मैं हारा और तू विजयी हुआ तो मैं अवश्य ही तेरी शरण में आ जाऊँगा। ठीक है अब ऐसा ही होगा, मैं तेरी शरण लूंगा अगर मैं तुझसे पराजित हो जाऊंगा। पांडव पुष्प का चढ़ाकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ नष्ट कर दिया। अब रथ पर खड़ा है लेकिन बेचारा रथ को भगा भी नहीं सकता, अब खतरे में तो पड़ गया बहुत बड़े, लेकिन वो अपनी क्योंकि जिद है उसकी कि मैं भगवान हूँ ये मान्यता अपनी कैसे छोड़े, तो भाग नहीं सकता है। रथ से तो अपनी रक्षा हो सकती है, भाग जाए, लेकिन अब भाग नहीं सकता है, तो भगवान ने रथ को नष्ट किया। अब तो वैसे भी नहीं भाग पाएगा। फिर भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट लिया, जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट गिराते हैं। इति पौंडकम सिरो यथा गिरे। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काट कर काशी नगरी में जा गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का फूल हो। काशीराज, हाँ काशीराज उसका मित्र था पौंडरक का, तो उसका सिर बाण से काटा। पौंडरक का सिर काटा किससे? चक्र से। हैं क्यों चक्र से काटा? क्योंकि तो भगवान ने भगवान को उसने संदेश भेजा कि अपने चने छोड़ो, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चने छोड़ता हूँ अपना, तो अपने चक्र से उसका सिर काटा। काशीराज का सिर काटा काय से? बाण से काटा। क्यों? क्योंकि बाण जो है, बाण ले गया उसके सिर को कहाँ पर? उसी के महल में, काशीराज के महल में बाण ले गया। बाण ने जो है सिर काट करके और वहाँ छोड़ा, काशीराज उसी के महल में छोड़ा। तथा काशी पते काया क्षिरोत्कृत्य पत्र भीम निपातयन काशीपुर्याम पद्म कोशम एवा मिलहा। सातर्म का है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बतलाया है कि कृष्ण ने काशीराज के सिर को उसके महल में क्यों फेंका। काशीराज ने युद्ध में जाते समय नागरिकों को वचन दिया था कि हे काशीवासियों, आज मैं शत्रु का सिर काटकर नगर में लाऊंगा। काशीराज ने अपने नगर के लोगों को या महल के लोगों को कहा था कि मैं कृष्ण का सिर काट के लाऊंगा। इसमें जरा भी संदेह मत मानो। राजा की पापिनी रानियों ने भी अपनी दासियों से डींग मारते हुए कहा था आज हमारे स्वामी द्वारका के नाथ का सिर अवश्य लाएंगे काट करके। इसलिए भगवान ने काशी निवासियों को चकित करने के लिए राजा के सिर नगर में फेंका। इस तरह ईर्ष्यालु पौंडरक और उसके मित्र का वध करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए, जोहिनी नगर में घुसे। स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमृतमयी महिमा का गान किया। स्वर्ग के जो देवता हैं सिद्ध हैं उन्होंने गुणगान किया। एवं मत्सरिणम हत्वा पौंडरकम शासकम हरिम द्वारका मा विशन सिंधर गीयमान कथामृत। हाँ लेकिन पौंडरक का उद्धार हो गया, पौंडरक का उद्धार हो गया। कैसे? निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पौंडरक ने अपने सारे भौतिक बंधनों को ध्वस्त कर दिया था। हे राजन, निस्संदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततोगत्वा वो कृष्ण भावना भावित हो गया। सनित्यं भगवत ध्यान प्रध्वस्ता अखिल बंधन दिभ्रानस्ता हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भव। तात्पर्य है जहाँ तक पौंडरक का संबंध था वो भगवान वासुदेव की भांति मिथ्या ही वेश धारण करके किसी न किसी प्रकार से उनका चिंतन करता रहता था, उनके रूप का चिंतन करता रहता था। इसीलिए पौंडरक को पांच प्रकार की मुक्तियों में से सारूप मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ जहाँ अपने चारों हाथों में चार चिन्ह धारण करने वाले विष्णु के समान भक्तगण भी शरीर धारण किए रहते हैं। वास्तव में पौंडरक का ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था किंतु वो अपने आप को विष्णु समझता था जो कि अपराध था। किंतु कृष्ण द्वारा वध हो जाने पर वो अपराध भी समाप्त हो गया। आप समझ रहे? तो अपराध जो है मतलब अपराध दूर होना चाहिए, है ना? तो अपराध जो है कैसे दूर हुआ? भगवान ने स्वयं उसका वध किया, उसका अपराध दूर हुआ, उसको दंड दिया। तो भगवान गुरु के चिंतन से भगवान गुरु प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसे प्राप्त नहीं होता अगर कोई अपराध करता है। आप सुनिए ना, और अपराध क्या था? भक्त लोग भगवान गुरु का चिंतन करते हैं, भगवान गुरु का चिंतन करते हैं, इन कैसे कि वे मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ, इस भावना से। लेकिन जो असुर है वो भगवान गुरु का चिंतन करता है कैसे कि मैं ही भगवान हूँ, तो अपराध है, तो उसको थोड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसको सारों की मुक्ति कैसे मिली? भगवान ने उसका वध कर दिया, तो उसको दंड दिया, इस प्रकार से उसका अपराध दूर कर दिया, तब उसको क्या मिला? मुक्ति मिली, सारूप मुक्ति मिल गई है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस विधि से भगवान के धाम चला जाए। आप समझे क्यों? क्योंकि अपराध, उसका जो अपराध है वो कहीं दूर होगा, भगवान थोड़ी मारने के लिए आएंगे। अब कौन रखे थे, और भी कोई अगर भगवान का रूप बनाए और अपने को कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो भगवान थोड़ी मारने के लिए आएंगे, तो उसका जो अपराध है उसको डुबा देगा, है कि नहीं? तो इसलिए नकल नहीं करना पौंडरक की, पौंडरक की नकल नहीं करना, क्योंकि वो भगवान का अवतार काल था, तो भगवान के अवतार काल में उसने नकल की और भगवान से युद्ध भी किया, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो करी उसने इतनी हिम्मत करी और जब उसके सामने मौत थी तो भी वो भागा नहीं है? अब जो भी कारण हो, कम से कम इतनी हिम्मत की उसने और मौत को गले लगाया, मौत को स्वीकार किया, इस प्रकार से अपराध से मुक्त हो गया वो, है ना। अपराध से मुक्त, इसको समझना है। तो आज की जो कथा है वो हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे, कथा तो और भी आगे है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न हो, कोई चर्चा हो। हाँ जी, इनका प्रश्न है कि यदुवंशी कृष्ण को भगवान नहीं समझते, परमात्मा समझते। नहीं, यदुवंशी जो है भगवान की योग माया में मोहित हैं, योग माया के प्रभाव में वे अपना संबंधी समझते हैं कि कृष्ण भी यदुवंशी हैं, हम भी यदुवंशी हैं, तो हम भी कृष्ण के समान हैं, और वो संबंध उन्होंने जो बनाया हुआ है वो तो बड़ा गहरा संबंध है, मतलब खून का संबंध है। कोई अपना मामा समझता है, कोई अपना चाचा समझता है, कोई अपना भांजा समझता है, कोई अपना दामाद समझता है, कितने कितने संबंध यदुवंशियों के, है ना। तो इस संबंध में वो जो है कृष्ण के बहुत निकट हैं, ठीक है ना। तो ये जो है योग माया का प्रभाव होता है, तो इससे भक्त भगवान के और निकट आता है, क्योंकि भगवान को जो है ईश्वर मान करके भगवान की पूजा करना, इसमें तो कुछ दूरी रहती है। आप समझे, इसमें तो कुछ दूरी रहती है, लेकिन जब अपना संबंधी मान लिया, अपना भाई मान लिया, अपना पिता, अपना चाचा, है ना, तो कोई अपना चाचा बोलता है, चाचा चाचा चाचा, है ना, भांजे मामा, इस तरह से बोलते हैं और अपना समझते हैं, तो वो अपनापन जो है वो इसमें ज़्यादा है। यदुवंशी बहुत भाग्यशाली हैं इस दृष्टि में, तो उनमें अपनापन मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसा भाव भी उनके अंदर रहता है, समय समय पर उनको याद आता है कि हाँ भगवान हैं, देवता लोग भी स्तुति करते हैं भगवान की, है ना, उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण है। लेकिन ब्रज का जो भाव है वो तो बहुत प्रबल है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भाव बिल्कुल आते ही नहीं है, ठीक है ना। माता यशोदा ने जो है कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा और एक क्षण के लिए विचार आया कि ये जो है मेरे बालक का ही ये वैभव हो सकता है, और फिर अपने विचार आया कि मैं तो कितनी मूर्ख हूँ, मैं अपने को ब्रज की स्वामिनी समझ रही हूँ, जिस ईश्वर की माया के द्वारा मैं ऐसी भ्रमित हूँ, वो ईश्वर की मैं शरण लेती हूँ, उस ईश्वर की मैं शरण लेती हूँ। तो भगवान ने तुरंत अपनी योग माया फैलाई और फिर माता यशोदा को महसूस हुआ कि मेरा बालक जो है डर रहा है मेरे हाथ की छड़ी से, मेरा बालक डर रहा है, तो छड़ी फेंकी और बालक को गले से लगा लिया, है ना। तो ब्रज में जो है ऐश्वर्य भाव बहुत ज़्यादा क्या है, क्षीण है, दबा हुआ है, ढका हुआ है, है? जो मात्सल्य भाव है ना, स्नेह, स्नेह में जो है वो स्नेह की बहुत प्रबलता है ब्रज में, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से जो ब्रजवासी हैं वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे कृष्ण के बहुत निकट रहते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भगवान का कुछ अपराध ना हो जाए, ये करना है, वो करना है, है ना, बहुत बुरा है, तो थोड़ा दूरी रहती है ना। लेकिन जो भगवान को अपना पुत्र मान लें, अपना भाई मान लें, अपना कुछ कर लें, तो वो तो ध्यान मतलब इतना निकट रहते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है, कई भक्तों के साथ ऐसा होता है, जिनको मैं जानता हूँ ऐसे भक्त हैं कि वो भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में वो उनको वैसा जो है भाव प्रदान कर देते हैं, तो वो अपने को जो है भगवान का पिता ही समझते हैं, माता समझते हैं, अपने बिस्तर में ही सुलाते हैं भगवान को, अपने थाली में ही बैठा करके भोजन कराते हैं भगवान को, है। तो इस तरह के मतलब बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके घर में भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, ठीक है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, और कोई ना आपसे। द्वारका में भगवान जो है अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, द्वारका की लीला ऐसी ही है। और भक्तों का जो है अपना एक चुनाव होता है, जो भगवान के ऐश्वर्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं तो वो द्वारका में जाते हैं, द्वारका लीला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और जो भगवान को माधुर्य भाव में प्रेम करते हैं वो ब्रज लीला में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ में भी ऐश्वर्य भाव है, ठीक है ना, वैकुंठ में तो पूरा पूरा ऐश्वर्य भाव है, द्वारका में ऐश्वर्य भाव भी है और मनुष्य भाव भी है, है ना। और ब्रज लीला में तो पूरा पूरा मनुष्य भाव है, पूरी तरह से मनुष्य के भाव में है भगवान, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति की का अपना एक स्वरूप है, तो अगर आपका ब्रज लीला में आपका स्वरूप है तो आप उसी भाव में आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, क्योंकि सब भाव में मतलब पूर्णता है, जो जिस भाव में है उसी में ही असीमित सुख है। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि भाई ये ऊंचा है ये नीचा है, लेकिन जब कहा जाता है कि भाई ये ऊंचा है ये नीचा है, तो जब हम बाहर आ जाते हैं उस भाव से तब हम कह सकते हैं ऊंचा नीचा। आप समझ रहे, जैसे मछली है तो सब किसी समुद्र में मछली है, तो छोटा समुद्र हो तो मछली के लिए वो असीमित है, आप समझ रहे, और जो बड़े समुद्र की मछली है ना, उसके लिए असीमित है, तो ऐसे कोई अंतर ही नहीं मछली के लिए। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आप कह सकते भाई ये छोटा समुद्र ये बड़ा समुद्र है, है ना। लेकिन जो मछली है समुद्र के अंदर, तो छोटा समुद्र हो बड़ा समुद्र हो उसके लिए तो असीमित है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वैकुंठ में जो भगवान का जो प्रेम है, वैकुंठ में जो भगवान जो प्रेम करते हैं तो उसमें कोई कमी है, अभी या कोई सुख मिलता है वैकुंठ में तो उसमें कोई कमी है, वो सुख असीमित है, उसका कोई अंत नहीं है, असीमित है वैकुंठ का भी सुख, द्वारका का सुख। अब हम कहते हैं ऊपर है द्वारका का सुख और उसके ऊपर है ब्रज का सुख और उसके ऊपर है, तो हम जब बाहर निकलते हैं उस सुख से तब हम देख सकते हैं, जो सुख में है उस सुख में है वो नहीं देख सकते हैं कि भाई इससे भी बढ़कर के कोई सुख हो सकता है, ठीक है ना। आपका प्रश्न, भगवान के चार हाथों में जो चिन्ह है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई, भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई, भगवान के चिन्ह उनकी उत्पत्ति नहीं हुई, जो माँ बजा मना दिन चाह बेटी लोक नहीं करें, है, जो मुझको जन्मा अनादि मानता है वो मनुष्यों में मूर्ख नहीं है। समझे? अगर हम सोचते हैं नहीं कभी उत्पत्ति हुई होगी, भगवान की उत्पत्ति हुई होगी, भगवान के चरणों की उत्पत्ति हुई होगी, है ना, एक क्या है, एक अज्ञानी है। असमूढ़ा समर्थ ऐसे सर्व पाप है प्रमुखते, सब पापों से वो मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लीला के दृष्टि से सुदर्शन चक्र भगवान को जो है अग्निदेव ने प्रदान किया था, है ना। जब खांडव वन को जलाना था तो अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव धनुष प्रदान किया, रथ प्रदान किया, दो अक्षय तर्कस प्रदान किए, भगवान कृष्ण को चक्र प्रदान किए। तो मंत्र की लीला में भगवान ने चक्र का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया वो खांडव वन को जलाने में प्रयोग किया, ठीक है ना। तो ये लीला पांच जनसंघ भगवान का तो कभी उत्पत्ति नहीं हुई, ये लीला में पांच जनसंघ भगवान को कब मिला, जब समुद्र में पंचजन नाम के असुर को वध किया तो उसके शरीर से वो संघ बना, तो भगवान ने पांच जनसंघ प्राप्त किया। लेकिन भगवान तत्व से जो है, ये भगवान के जो चिन्ह है, भगवान का जो रूप है, भगवान के गुण है, भगवान के नाम है, ये सब क्या है, अनादि हैं, कभी उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है ना। और कोई, हाँ, भगवान कौस्तुभ मणि किसने प्रदान किया, आप बताइए कौस्तुभ मणि किसने प्रदान किया, भगवान की है, है? है? वो सिमंतक मणि है, सिमंतक मणि अलग है, कौस्तुभ मणि अलग है, है ना। कौस्तुभ मणि का उल्लेख नहीं है कि भगवान कौस्तुभ मणि किसने प्रदान किया, है ना। कौस्तुभ मणि का जो चिन्ह है वो भगवान का जो है, जब भी प्रकट करते हैं अपनी चार भजाएं, है ना, कृष्ण की चार भजाएं किसने दी भगवान को, कौस्तुभ मणि दी उनके, है ना। और कोई प्रश्न, हाँ जी, इनका प्रश्न है कि माता शारदा तो भूल गई, शास्त्र में लिखा कैसे गया है। आपको पता है कि जितनी भी कृष्ण की लीलाएं हैं ये व्यास देव ने लिखी हैं, व्यास देव, व्यास देव के पास दिव्य दृष्टि है, त्रिकालज्ञ हैं, है कि नहीं। उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी तो संजय भी सब कुछ देख सकते, सब कुछ बता सकते, सब कुछ जान सकते, भूत वर्तमान भविष्य, है जी। और लीलाएँ आप, ये श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद है, है ना, इसमें सब लीलाएँ हैं, ठीक है ना, दसवें स्कंद की। इसमें जो है एक लीला है रुक्मिणी, रुक्मिणी जब मूर्छित हो गई, है ना, तो भगवान ने जो है उनको चार भुजाएँ प्रकट कर की, है ना, दो भुजाओं से उनको जो है उठाया, है, उनका आलिंगन किया और पसीना पोछा। तो इस तरह से कई स्थानों में भगवान की चतुर्भुज जो की लीलाएँ हैं, ठीक है ना। मथुरा में भी नारद जी ने कालियवन से कह दिया था कि वासुदेव जो मथुरा में वासुदेव रहते हैं तो वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी में और कोई तुमसे युद्ध करने वाला नहीं है, कोई जोड़ेदार नहीं तुम्हारा। तो उसने पूछा था कि उनका कैसा रूप है, तो नारद जी ने कहा कि चार भुजाएं हैं उनकी, चार भुजाएं, और सब बताया कि मतलब नेत्र कैसे सुंदर हैं, कैसा शरीर है, कैसे वस्त्र हैं, है? तो उस समय कालियवन जो है जब आया था मथुरा को घेर करके तो भगवान से उसी रूप में निकले, चतुर्भुज रूप में ही निकले, है ना। तो मथुरा में भी भगवान जो है चतुर्भुज रूप, जब उन्होंने जन्म लिया था तो देवकी वसुदेव को अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया था, है ना। लेकिन जब चतुर्भुज रूप दिखाया था देवकी वसुदेव को तो वो छोटे से बालक थे। अभी चित्र में जो दिखाए जाते हैं कि मतलब चार भुजाओं के पूरे भगवान बड़े हैं, लेकिन वो बड़े भगवान नहीं हैं। चार भुजाओं का बालक बिल्कुल जैसे बिल्कुल नवजात शिशु जो कि अभी पैदा हुआ हो, इतना छोटा बच्चा है, चार भुजाएँ, चार भुजाओं का बच्चा है और सब वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्र भी छोटे छोटे हैं बालक के, और संग चक्र गदा पद्म भी छोटे छोटे हैं उन्हीं उनके भुजाओं के आकार के। वो रूप देखो कैसा भगवान, चित्र में तो दिखा दिया कि वो मतलब भगवान बड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो बालक है चार भुजाओं का। हाँ जी हाँ, ये जो चित्र है ये दिखा दिया है, लेकिन वर्णन ऐसा नहीं है। समद्भुतम बालकम मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम संस्कृतार्य लाए हूँ, है ना। तो बालक था, बालक था, है बालक रोता है, लेकिन ये बालक रो नहीं रहा था, हंसता था। दो भुजाएँ होती बालक की, एक भुजा इस बालक की चार भुजाएँ थी। बालक नग्न होता है और इस बालक के सब आभूषण वस्त्र सब धारण किए थे। हंस रहा है बालक और बोल रहा है, बालक तो बोलता नहीं है, क्वा क्वा मतलब केवल रोता है। ये बालक बोल रहा था और बोल रहा था हाँ कि मैंने जो है तुमको तीन जन्मों के लिए जो है वरदान दिया है, तीन जन्मों से मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूँ, और पिछले जन्म में तुम कौन थे, पिछले से पिछले जन्म तुम कौन थे, और मैं किस रूप में तुम्हारा पुत्र बना था। वो बालक जो है, लेकिन बालक है, बालक ही बोल रहा है, और बोलते बोलते वो बालक जो है चार भुजाओं से दो भुजाओं का बालक बन गया, है ना। तो सामान्य रूप से लोग उतना सोच नहीं पाते हैं, तो चित्र जो बनाया है वो उतना सोच के नहीं बनाया चित्र, ठीक है ना। आप तो हाँ नहीं, देखिए जिसका जो स्वरूप होता है तो वो जान जाता है उसका स्वरूप, और वो जो व्यवस्था है वो भगवान ऐसी करते हैं कि उसको ऐसी संगति मिल जाती है कि अगर वो भगवान की माता है तो वो जो है माता का भाव उसके अंदर आ जाता है, भगवान के प्रति भगवान के सखा का भाव आ जाता है, सखा की बुद्धि आ जाती है भगवान के प्रति उसकी। तो ये सब जो है भगवान अंदर से भी देते हैं, अंदर से उसका अगर स्वरूप है और शुद्धिकरण हो गया है तो वो जागता है, तो वो आता है, और जैसे वो उस तरह की बातें वो सुनता है तो उन्हीं को पकड़ता है। आप समझे ना, तो ये बाहर की भी जो स्थितियाँ हैं वो भगवान ऐसी बनाते हैं कि उसको जो है कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो कि उसको ऐसा भाव प्रदान करने में सहायक हो। अंदर से भी हो रहा है और बाहर से भी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, है ना। जैसे बच्चा है और मनुष्य का बालक है तो वो तो खड़ा हो सकता है और चल सकता है, लेकिन जब तक वो खड़ा नहीं हो पाता है उसके अंदर खड़ा होने की इच्छा होती है, चलने की इच्छा होती है, है? क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता है तो विकसित करता है अपनी योग्यता। उसी प्रकार से जिसका जो स्वरूप होता है तो उसके अंदर वो इच्छा पैदा हो जाती है ऐसा बनने की, भगवान को ऐसा मानने की इच्छा पैदा हो जाती है उसके अंदर, अंदर से भी वो भाव पैदा होता है, ठीक है ना। अब हर प्रकार की बातें हैं कि कोई भगवान को अपना पति मानता है, कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई भगवान को ईश्वर मानता है, लेकिन फिर वो उसका आकर्षण उसी विचार में होता है कि भगवान मेरे पुत्र हैं, ये भाव आता है। और फिर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और लीलाएँ भी करते हैं, तो भगवान स्वयं जो है अगर ऐसी लीलाएँ करेंगे उसके सामने तो वो फिर जो है भगवान को भगवान नहीं मान सकता। तो उसने सब कुछ जाना है कि भगवान है ये, लेकिन अगर भगवान स्वयं ही उसके पुत्र बन जाएँ, उसके मित्र बन जाएँ, उसके भाई बन जाएँ तो उसका जो ज्ञान है तो वो ढक जाएगा योग माया के प्रभाव से, ठीक है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भगवान ही मानता है कि भगवान है, लेकिन अगर भगवान हंसते हैं और भगवान जो है अपना भाव प्रकट करते हैं पति की तरह अगर भाव प्रकट करते हैं तो फिर वो जो है उनको फिर पति ही मानेंगे। एक तरफा थोड़ी होता है कि एक तरफा आप जो है भगवान को मान रहे हैं और भगवान को उत्तर नहीं दे रहे हैं। भगवान भी ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, तो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं उनका उसी भाव से भजन करता हूँ, है ना। तो भगवान भी अपनी सेवा लेते हैं, भगवान सेवा कराते हैं, है ना। भगवान ऐसा भाव तो सुंदर पैदा करते हैं, पुष्ट करते हैं, ना सुनिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाल की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री राधा पार्वती भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय हो। हरे कृष्णा।